नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। 77वें गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने यमुना पार्क क्षेत्र के विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को पारित किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। और अब समाचार विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
सशस्त्र बलों के बैंड ने वंदे मातरम, भारत की शान, ए वतन और सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति गीतों की धुनों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। समारोह में भारतीय वायुसेना के बैंड ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रस्तुति दी। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड के कदम कदम बढ़ाए जा के साथ हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड ने विजय भारत, हतरोही, जय हो और वीर सिपाही बजाया। वायुसेना ने ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार धुन बजाई, जबकि नौसेना बैंड ने नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती धुन बजाई। भारतीय सेना के बैंड ने विजयी भारत, आरंभ है, प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत और सितारे हिंद बजाया। कार्यक्रम का समापन बिगुल वादकों द्वारा बजाए गए सदाबहार गीत सारे जहां से अच्छा के साथ हुआ। इस वर्ष विजय चौक पर आगंतुकों के बैठने के स्थानों के नाम भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर तब के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई। उन्होंने कहा कि महिला श्रम बल भागीदारी में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। श्री नागेश्वरन ने कहा कि वर्ष के पहले 9 महीनों में बेरोजगारी दर लगातार 5.4% से घटकर पिछली तिमाही में 4.9% हो गई। उन्होंने कहा कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कोरोना के बाद से लगातार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है।
कोरोना काल से पूर्व के औसत की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में देखें तो वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% थी और वित्त वर्ष 2025 में 6.5% थी। इस वर्ष इसके 7.4% रहने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय में इस वर्ष 7% की वृद्धि हुई है। वहीं सकल स्थिर पूंजी निर्माण वित्त वर्ष 2025 की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगा और निश्चित रूप से बैंकिंग और कॉर्पोरेट संतुलन वर्ष 2012 से 2020 की अवधि की तुलना में कई बेहतर होगा, जब यह औसतन प्रतिवर्ष मात्र 6.3% था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने सफरनामा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि विकास की भागीदार और नेतृत्वकर्ता भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देशभर से आगंतुक राज्य महिला आयोगों की प्रतिनिधि नीतियों को जमीन पर उतारने, उनकी आवाज बनने और उन्हें न्याय दिलाने और आगे बढ़ाने का दायित्व निभा रही हैं।
मैं आज आप सभी देश के अलग अलग राज्यों से आई हुई मेरी बहुत ही पावरफुल बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ, तीन पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें काम करना होगा। एक तो महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, दूसरा उनका आर्थिक सशक्तिकरण, और तीसरा डिसीजन मेकिंग में, नेतृत्व में उनकी सहभागिता। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें, उन्हें आगे लेकर के जाएं।
सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत देश के 20 एम्स संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। इस संबंध में दिल्ली में सभी एम्स निदेशकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एम्स दिल्ली के निदेशक एम श्रीनिवास ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वित बायोमेडिकल और क्लिनिकल अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए देश में सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की शक्ति को एक साथ लाया जाएगा। श्रीनिवास ने कहा कि एम्स का लक्ष्य मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उत्पन्न करना, नवाचार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा में सूचित निर्णय लेने का समर्थन करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन का विषय मुक्त, दूरस्थ, डिजिटल और मिश्रित शिक्षण में उभरती प्रवृत्तियां और चुनौतियां था। इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। एक रिपोर्ट।
उद्घाटन समारोह के संबोधन में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या को ऑनलाइन, दूरस्थ, डिजिटल और मिश्रित अधिगम के माध्यमों से उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
डिजिटल तरीके से क्लासरूम से बाहर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने का, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, डिस्टेंट लर्निंग को छोटा करने का एक एफर्ट चलता रहा है, उसको ठीक करने का ये प्रयास है।
इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अध्यक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संसाधन साझा करने, मुक्त शैक्षिक संस्थानों के प्रोत्साहन तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु रणनीतियों जैसे पूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा विद्यालय और मुक्त शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद और ब्रिटिश परिषद के सहयोग से 31 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली सरकार ने यमुना पार्क क्षेत्र में विकास की गति को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए करीब 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को पारित किया। इस बजट के आवंटन की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पार्क क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना पार्क के विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही बोर्ड के सदस्यों को ये निर्देश दिया कि आवश्यकता के आधार पर योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रांस यमुना क्षेत्र का विकास दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यमुना पार्क क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
यमुना पार्क में 800 करोड़ रुपए के काम आज सैंक्शन किए हैं, मेनली सब कॉन्स्टेंसीज में रोड्स के लिए। इस बार हमने इस ईयर वो प्रायोरिटी रखा है और नेक्स्ट ईयर हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो है वो ईस्ट दिल्ली में आएंगे। कहीं एलिवेटेड रोड के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, हैबिटेट सेंटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स यमुना पार्क में आएंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले 11 महीनों में सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। इनमें जल स्रोतों की सफाई से लेकर जल निकासी प्रबंधन और अपशिष्ट उपचार संयंत्र को मजबूत करना भी शामिल है। श्री सिरसा ने इस संबंध में दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ कल एक बैठक की। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में 12 नए उन्नत संयंत्रों की क्षमता को 436 MGD तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा श्री सिरसा ने कहा कि 13 विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए जल निकास नेटवर्क का काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों के सुधार और पुनर्वास के लिए लगभग 700 बच्चों की क्षमता वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकीकृत परिसर के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस परिसर में उन बच्चों को रखा जाएगा जो नाबालिग न्याय बोर्ड के समक्ष जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं या उन्हें अपराध में दोषी पाया गया है। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को येलो लाइन वायलेट लाइन के अतिरिक्त मैजेंटा लाइन से भी जोड़ दिया जाएगा। ये जुड़ाव केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पांचवें चरण गलियारे के तहत किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इस जुड़ाव से सभी कर्तव्य भवनों से कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे इस इलाके में दफ्तर जाने वालों को और आम नागरिकों को भी घर के पास तक कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि इस जुड़ाव से रोजाना लगभग 60,000 कार्यालय जाने वालों और 2,00,000 आगंतुकों को लाभ होगा। 31 जनवरी से शुरू होने वाले सूरजकुंड मेले के लिए दिल्ली परिवहन निगम DTC द्वारा विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत DTC बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से लेकर सूरजकुंड मेला ग्राउंड के बीच लगभग 4 किलोमीटर के मार्ग पर 2 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस बस मार्ग से मेट्रो से आने वाले यात्रियों को अंतिम मील कनेक्टिविटी की सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन सेवा सदन में दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम की खिलाड़ियों कोच और दृष्टिबाधित संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता राजधानी में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को होने वाली सभी दिक्कतों का पूर्ण निवारण करने का भी आश्वासन दे रही थीं। साथ ही उनके लिए विशेष हॉस्टल और खेल के मैदान बनाने की बात भी उन्होंने कही। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, उनका संघर्ष और अदम्य साहस हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
दिल्ली राज्य में आपको जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उन सबको परमानेंट समाधान हम देंगे। भारत की आन बान शान हो तो आपकी सपोर्ट जरूर करेंगे और आपने इतना अच्छा किया है तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश का नाम बढ़ाते रहें।
गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और झांकियों के नतीजों की घोषणा कर दी गई है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता घोषित किया गया है जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने ये पुरस्कार जीत लिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने अपनी झांकी गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए पहला स्थान हासिल किया जबकि जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प और लोक नृत्यों के लिए दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद केरल तीसरे स्थान पर रहा है। राजधानी में आज दिनभर हल्की धूप के साथ बादल छाए रहे और शाम के समय ठंड भी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान रहा 11 डिग्री सेल्सियस। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 77वें गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने यमुना पार्क क्षेत्र के विकास के लिए 728 करोड़ रूपये की योजनाओं को पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दे दिया है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।